आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिल्ली के लाल किला कार विस्फोट मामले में शामिल एक और आतंकी को किया गिरफ्तार। प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में जांच और छापेमारी की कार्रवाई जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर के दौरे की तैयारियां देखने आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सोनभद्र खदान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक निकाले जा चुके हैं 6 लोगों के शव, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। और MP MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आजम खान और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सुनाई 7-7 साल की सजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में शामिल आतंकवादी उमर नबी के एक और प्रमुख सहयोगी जसीर बिलालवानी को गिरफ्तार कर लिया। NIA ने उसे कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया। अभिकरण के अनुसार वानी ने कथित तौर पर इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के एक अन्य आरोपी आमिर राशिद अली को कल 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया। एक रिपोर्ट।
उमर मोहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने NIA की हिरासत में पूछताछ की अर्जी स्वीकार कर ली। NIA ने अली को गिरफ्तार किया था। हमले में इस्तेमाल की गई कार इसी के नाम पर पंजीकृत थी। उसे दिल्ली में एक व्यापक तलाश अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में जांच और छापेमारी की कार्रवाई जारी है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को प्रस्तावित ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे। अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। ड्रोन और CCTV से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग भी अयोध्या में व्यापक तैयारियां कर रहा है। वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी सुशील कुमार बानियान ने बताया कि शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर अस्थाई उपचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
3 हमारे स्थायी चिकित्सालय हमने चिन्हित किए हैं पहले की तरह ही, जहां श्रीराम 20 बेड और मेडिकल कॉलेज में 20 बेड और जिला अस्पताल में 10 बेड हमने आरक्षित किए हैं। ये स्थायी व्यवस्था हमारी। इसके अतिरिक्त हमारे 16 जो हैं वो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जहां अस्थायी चिकित्सालय हमारे बनाए गए हैं, जहां ये सभी सुविधाएं सभी श्रद्धालुओं को मिलेंगी। यदि कोई भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य परेशानी होती है तो उसे किसी भी कीमत पर 200 मैक्सिमम 250 मीटर की दूरी पे मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अलग अलग निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जून माह के बाद बारिश से निर्माण कार्य प्रभावित होता है, इसलिए अक्टूबर 2026 से 4 माह पहले ही इसे पूरा करने पर जोर दें। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बालापाट टिकरिया गांगी बाजार 4 लेन के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 लेन सड़क और इसके आसपास के गांवों की आबादी की जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गिरीश नारायण चौबे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने बस्ती जिले का भी दौरा किया। वहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री योगी ने बस्ती के अस्पताल चौराहे के मन्नत देवी स्थान पहुंचकर ब्रह्मलीन नंदानाथ महाराज को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा ने दुनिया भर के देशों को हमारा अनुसरण करने को मजबूर कर दिया है। कल लखनऊ में एक निजी शिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में छलांग लगाई है।
भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हाँ हमें इसको अंगीकार करना ही होगा, और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है। लोगों में जो हताशा थी, निराशा थी, उसे आशा और उत्साह में भरने का काम 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। हरेक क्षेत्र में भारत ने एक नई छलांग लगाई है।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के तहत आयोजित विचार मंथन गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में प्रदेश के कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन US डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। इसमें कृषि का योगदान 1 ट्रिलियन US डॉलर का करने के लिए कृषि विभाग काम कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। सोनभद्र में हुए खनन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां अब तक चले ऑपरेशन के दौरान कुल 6 शवों को निकाला जा सका है। जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कल सोनभद्र पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने दुर्घटना के पीड़ितों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव योगेंद्र डिमरी ने कहा कि राहत और बचाव की टीमें बहुत सावधानी पूर्वक और नियंत्रित ढंग से काम कर रही हैं। रामपुर के MP MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री आजम खान और उनके पुत्र एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कल वर्ष 2019 में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज हुए मामले की सुनवाई की, जिसमें 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों से 2 पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने इस मामले में दोनों को दोषी मानते हुए कारावास के साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों की दरों में 26% की बढ़ोतरी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि दैनिक समाचार पत्रों की 1,00,000 प्रतियों के लिए प्रति वर्ग सेंटीमीटर ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन की दरें 47.40 रुपए से बढ़ाकर 59.68 रुपए कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
इस निर्णय से प्रिंट मीडिया को गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता बनाए रखने में और स्थानीय खबरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आर्थिक मजबूती मिलने पर मीडिया बेहतर सामग्री तैयार कर सकेगा और जनता की जरूरतों को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा कर सकेगा। विविध मीडिया माध्यमों वाले वातावरण में प्रिंट मीडिया के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार अपनी संचार रणनीतियों को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकेगी, ताकि उसकी जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ग्रेटर नोएडा में चल रहे विश्व मुक्केबाजी फाइनल कप में कल भारत के खिलाड़ी पवन ने कजाकिस्तान के अल्तिनबेक नूर सुल्तान के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की है। वहीं एक अन्य मुकाबले में भारत के सुमित ने कोरिया के किम ह्योंटे को 5-0 से हरा दिया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने प्रतियोगिता में पहुंचकर भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिल्ली के लाल किला कार विस्फोट मामले में शामिल एक और आतंकी को किया गिरफ्तार। प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में जांच और छापेमारी की कार्रवाई जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर के दौरे की तैयारियां देखने आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सोनभद्र खदान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक निकाले जा चुके हैं 6 लोगों के शव। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। और MP MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आजम खान और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सुनाई 7-7 साल की सजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।